श्री राधाष्टमी का पावन दिवस मना रहे हैं। हमारे लिए श्रीमती राधा रानी बहुत महत्वपूर्ण है। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में ऐसे माना जाता है कि हमारे जितने महान आचार्य हुए वो गोलोक वृंदावन में अपने मूल रूप श्रीमती राधा रानी की दासियां या सेविकाएं हैं, खास करके मंजरियां। श्रीमती राधा रानी की सीधी तरह से सेवा करने का अधिकार हमें नहीं है, वैसे श्री कृष्ण की सेवा करने का अधिकार भी हमें नहीं है सीधी तरह से, वो केवल श्रीमती राधा रानी का है। श्रीमती राधा रानी की सेवा करने के लिए सखियां हैं और इन सारे सखियों की सेवा करने के लिए मंजरियां हैं। षड गोस्वामी और हमारे कई वैष्णवाचार्य, गौड़ी वैष्णवाचार्य, वो गोलोक वृंदावन में मंजरी रूप हैं। गौड़ी वैष्णवाचार्य श्रीमती राधा रानी के दल में है। दो दल हैं। किनके दो दल हैं? कृष्ण का एक और श्रीमती राधा रानी का एक। तो गौड़ी वैष्णव आचार्य वो श्रीमती राधा रानी के दल में है, इसलिए हमारे लिए श्रीमती राधा रानी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की अनुकंपा या कृपा के रूप हैं। उनकी कृपा से ही हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। उनके कृपा कटाक्ष, कृपा दृष्टि की अभिलाषा रखते हुए अगर हम राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए और उनके भक्तों की सेवा करते हुए, तो फिर हमारा जीवन सफल हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए कई भावनाएं या रस हैं, वास्तव में उनको रति कहना चाहिए। रति मतलब एक भाव जिसमें कि भगवान की सेवा की जाती है। कई बार इस विषय में चर्चा हो चुकी है, आप सब जानते भी हैं कि पांच तरह के रति हैं जिनमें हम भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। सबसे पहला है यह शांत रस, दूसरा है दास्य रति या दास्य रस, तीसरा सख्य, सख्य रति या सख्य रस, चौथा वात्सल्य रति या वात्सल्य रस, और पांचवा माधुर्य रस, श्रृंगार रति। अब ये पांचों ही अपने जगह में ठीक हैं। ये भक्ति की परिपूर्णता की पांच अवस्थाएं हैं और अलग अलग जीव इन पांचों में से अपने सिद्ध अवस्था में किसी भी स्थिति की प्राप्ति कर सकते हैं, किसी भी भाव को प्राप्त कर सकते हैं। ये पांचों अवस्थाएं विशुद्ध सत्व या शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हैं। इनमें बिल्कुल कोई भौतिक कलमश नहीं है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति समह सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति ब्रह्म भूत अवस्था में स्थित हो जाता है, अर्थात देह बुद्धि शारीरिक भावना से परे हो जाता है और आत्मा के स्तर में स्थित हो जाता है, तो वो प्रसन्न आत्मा, और ऐसे अवस्था में न शोचती न कांक्षती, किसी भी चीज का शोक नहीं करता है वो, और न ही किसी चीज की अभिलाषा करता है, किसी भौतिक चीज की। समह सर्वेषु भूतेषु, सारे प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, समदर्शी हो जाता है। और ऐसे शुद्ध अवस्था में उसकी असली भक्ति शुरू हो सकती है। मद भक्तिम लभते पराम, ये पराभक्ति है। हम जो भक्ति अब कर रहे हैं वो मिश्रित भक्ति है, क्योंकि हमारे सेवा में, भक्ति में भौतिक इच्छाओं का मिश्रण है। हम भगवान श्री कृष्ण के पास तो आते हैं, परंतु हमारे हृदय में और कई भावनाएं भी हैं, भौतिक भावनाएं। लेकिन जब हम इन भौतिक भावनाओं से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात इस शारीरिक बुद्धि से मुक्त हो जाएंगे जिससे कि ये अनर्थ उत्पन्न हो रहे हैं मन में, उस समय हमारी भक्ति पराभक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। परा शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, शुद्ध, सर्वोच्च। तो ऐसे सर्वोच्च भक्ति को प्राप्त करने के लिए देह बुद्धि से परे होना है। तो अलग अलग जीव अलग अलग तरह से जब भगवान की सेवा करते हैं, पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद इन पांच रतियों में से किसी भी एक को प्राप्त कर सकते हैं। और हरेक जीव को लगता है कि जिस रति में, जिस भाव में मैं स्थित हूं वो परिपूर्ण है, वही सबसे संतुष्टि देने वाला एक रस है, और उसमें वो पूरी तरह से संतुष्ट रहता है, उसे किसी भी चीज का। और उस जीव के लिए वो रति श्रेष्ठ है। यहां भौतिक जगत में किसी भी चीज की प्राप्ति करने के बाद व्यक्ति के मन में कोई ना कोई वस्तु का अभाव महसूस होता है, कोई कमीपन महसूस होती है। करोड़पति भी हो, अरबपति भी हो, फिर भी उसे लगता है कि मुझे और कुछ चाहिए, कोई चीज की कमी है। किसी दूसरे व्यक्ति के पास एक ऐसी कोई चीज है जो मेरे पास नहीं है। अरबपति भी हो लेकिन अगर सुंदर नहीं हो, कुरूप हो, तो वो चाहेगा कि ठीक है मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन काश मैं सुंदर भी होता, कितना अच्छा होता। कोई आदमी बहुत सुंदर है लेकिन गरीब है, सोचता है शायद काश मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाते। इसका मतलब है कि इस दुनिया में भौतिक शक्ति के प्रभाव से हमेशा हर एक व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति की कमी लगती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। पांचों रसों में जो भी जीव स्थित होते हैं भगवान के धाम में, अपने अपने जगह में वह पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी जो कि रसाचार्य हैं, रसों के विश्लेषण करने में आचार्य हैं, जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको विशेष शक्ति प्रदान की थी, अपने भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि हालांकि जीव अपने अपने जगह में पांचों रसों में स्थित हैं और परिपूर्ण हैं और ये उनके लिए बराबर है, फिर भी बाहरी दृष्टि से अगर विश्लेषण किया जाए तो हमें पता चलेगा कि क्रम से ये पांचों रस एक से दूसरे से श्रेष्ठ हैं। जैसे शांत रस से श्रेष्ठ है दास्य, दास्य से श्रेष्ठ है सख्य, सख्य से श्रेष्ठ है वात्सल्य, वात्सल्य से श्रेष्ठ है श्रृंगार। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो भक्त सख्य में है वो निम्न श्रेणी का है, नहीं, सब परिपूर्ण है। लेकिन ये परिपूर्णता के भिन्न भिन्न तरीके हैं, विविधता है परिपूर्णता की। तो फिर श्रेष्ठ किस दृष्टि से कहा गया है इनको कि एक दूसरे से श्रेष्ठ है? भक्ति या प्रेम की तीव्रता से, या भक्ति के रस से, जो मिठास होती है इस प्रेम में, उस दृष्टि से कहा गया है। वृंदावन में वैसे देखा जाए तो मिठास सारे रसों में है, चाहे वो गायों का कृष्ण से प्रेम करना, चाहे फूल लताएं पेड़ों का कृष्ण से प्रेम करना, ग्वाल बालों का, वरिष्ठ गोप गोपियों का या तरुणी गोपियों का, कृष्ण के प्रति प्रेम है, सब में मिठास है। ये वृंदावन की खूबी है। इसके विपरीत मथुरा और द्वारका में और इससे ज्यादा मात्रा में अयोध्या या वैकुंठ में ऐश्वर्य की भावना का प्राधान्य है। मिठास भी है लेकिन कम है। सब जगह सब कुछ मधुर है, मीठा है, परंतु जो ये सबसे ऊंचा रस है, श्रृंगार रस, जो कि प्रेमी और प्रेमिका का रस है, वृंदावन में इसकी मिठास इतनी ज्यादा है कि इस श्रृंगार रस को माधुर्य रस भी कहते हैं। हालांकि मधुरता सब में है लेकिन इसका प्राधान्य इतना है, इस श्रृंगार रस भी कहा जाता है। तो यह माधुर्य रस जो है ये वैकुंठ में भी पाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी देवी नारायण की सेवा करती हैं। ये माधुर्य रस अयोध्या में भी पाया जाता है, यहां सीता देवी श्री रामचंद्र की सेवा करती हैं। ये माधुर्य रस द्वारका में भी पाया जाता है, यहां पे 16,108 महिषियां महारानियां श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, लेकिन क्रम से इनकी मिठास में वृद्धि होती है और सबसे ज्यादा मिठास है वृंदावन में, जिस भाव में गोपियां श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। वैकुंठ में, अयोध्या में, द्वारका में इस माधुर्य रस को स्वकीय रस कहा गया है। स्वकीय मतलब विवाह के भीतर। लक्ष्मी देवी नारायण की पत्नी है, सीता देवी श्री रामचंद्र की पत्नी है, 16,108 जो महिषियां हैं वो श्री कृष्ण की रानियां पत्नियां हैं, लेकिन वृंदावन में परकीय रस है। ये गोपियां कृष्ण की पत्नियां नहीं हैं, योग माया के प्रभाव से उनके पतियां अलग अलग हैं गोपियों के, श्री कृष्ण तो केवल उनके प्रेमी हैं। तो ये माधुर्य रस के भीतर भी स्वकीय रस और परकीय रस है। स्वकीय रस तो बहुत मीठा है लेकिन परकीय रस उससे भी ज्यादा मीठा है। इसलिए वृंदावन के गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी, ऐसे बताया जाता है कि लाखों लाखों गोपियां हैं श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन में, उनमें से 16,108 श्रेष्ठ है। 16,108 में से 108 श्रेष्ठ है। इन 108 व्रज गोपियों में से 8 श्रेष्ठ हैं और इन 8 गोपियों में से 2 श्रेष्ठ हैं, राधिका और चंद्रावली, और इन दो में से श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ गोपी, सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण भक्त या कृष्ण प्रेमी श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी का प्रेम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महान है। ठीक है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण भक्त हैं, सबसे ऊंचे कृष्ण भक्त भी हो सकती हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे कहते हैं बस श्रीमती राधा रानी भक्त ही हैं, गोपिका स्त्री थी वो आखिर में वृंदावन में, उनको आपने लक्ष्मी देवी का स्थान क्यों दिया है? ऐसे अन्य संप्रदाय के लोग कभी कभी ऐसा पूछते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्रीमती राधा रानी को केवल लक्ष्मी देवी का स्थान नहीं दिया जाता है, बल्कि श्रीमती राधा रानी सारे करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों के उद्गम हैं। वही लक्ष्मी देवी, सीता देवी, द्वारका की रानियों के उद्गम हैं, जिस तरह से कि भगवान श्री कृष्ण सारे विष्णु तत्वों के उद्गम हैं। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चतुर्भुज रूप जो वैकुंठ में हैं, ये अंततः कृष्ण से आते हैं। बलराम भी कृष्ण से आते हैं, सारे अवतार सब अंततः कृष्ण से आते हैं। ठीक उसी तरह से जो भी इन अवतारों के संगनी हैं, वो सब श्रीमती राधा रानी से आते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी कौन है इसके बारे में हमें समझना आवश्यक है। चार्ट लगाएंगे तो थोड़ा बहुत हम समझने का प्रयास करें कि श्रीमती राधा रानी वास्तव में है कौन, चाहे क्या है वास्तव में, तत्व तत्व ज्ञान थोड़ा बहुत। अगर आप देख नहीं सकते तो सामने आ सकते हैं, क्या है पूर्ण, और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण क्या है, असंख्य शक्तियों के स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास कितने शक्तियां हैं, परास शक्ति विविधैव शूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान मतलब जिनके पास शक्तियां हैं। अगर किसी के पास शक्तियां नहीं हैं तो शक्तिमान कैसे कहलाएगा वो। अगर किसी राज्य में एक राजा है लेकिन प्रजा नहीं है तो फिर किस तरह का राजा हुआ वो। उसी तरह से भगवान कैसे भगवान हुए अगर उनके पास कोई शक्तियां नहीं हो तो। तो शक्तियां कितनी हैं भगवान के पास, अनंत शक्तियां हैं, असंख्य, इनकी गणना नहीं की जा सकती है। एक साधारण व्यक्ति जो शायद धनी हो या किसी ऊंचे पद में हो, उसके भी कितने सारे शक्तियां हो सकती हैं। जब मनुष्य की इतनी शक्तियां हो सकती हैं तो श्री कृष्ण की क्यों नहीं। तो श्री कृष्ण के असंख्य शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी इन सारे शक्तियों का विभाजन किया जा सकता है। वैसे इन सारे शक्तियों का विभाजन एक में किया जा सकता है, ये सब एक शक्ति है, लेकिन फिर भी हमारे भौतिक जगत के भीतर के दृष्टि से देखा जाए तो इनके दो वर्ग किए जा सकते हैं, दो प्रकार की शक्तियां। होस्कार की शक्ति है भौतिक शक्ति, जिसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं, मतलब उनकी बाहर की शक्ति है। वैसे श्री कृष्ण से बाहर कुछ नहीं है, श्री कृष्ण के भीतर ही सब कुछ है, परंतु बहिरंगा मतलब भौतिक, इसको अपराशक्ति भी कहते हैं, मतलब ये श्रेष्ठ नहीं है। और इसके विपरीत है आध्यात्मिक शक्ति, जिसको अंतरंगा शक्ति कहते हैं। अंतरंगा मतलब भगवान के अंदर की शक्ति है, इसको पराशक्ति कहते हैं, श्रेष्ठ शक्ति। आध्यात्मिक भौतिक से श्रेष्ठ होता है, आध्यात्मिक चेतन होता है, और भौतिक शक्ति जड़ है, इसमें कोई चेतना नहीं है। जब तक कि भौतिक शक्ति को के पीछे कोई आदि न हो तो ये भौतिक शक्ति क्रियाशील नहीं हो सकती है। इसलिए यहां पर भौतिक सृष्टि के निर्माण के लिए भी एक आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। विष्णु रूप है भगवान के विविध, जो कि इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसका पोषण पालन पोषण करते हैं और फिर इसका संहार भी करते हैं। भौतिक सृष्टि अपने आप में कुछ नहीं कर सकती है। आजकल नास्तिकवाद फैला हुआ है, लोग सोचते हैं कि इस सृष्टि के पीछे कोई भगवान नहीं है, या कोई लोग कहते हैं कि आप सोचते हैं कि सृष्टि के पीछे एक भगवान है, लेकिन हम तो कहते हैं कि भगवान को बीच में लाने के बजाय ऐसा क्यों नहीं कहते कि सृष्टि ही सनातन है, तो फिर भगवान को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर सृष्टि भी सनातन हो, लेकिन सृष्टि जड़ है, जड़ वस्तु अपने आप को नहीं बना सकती, जड़ वस्तु अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकती। जड़ वस्तु को क्रियाशील बनाने के लिए कोई चेतन वस्तु या व्यक्ति या बुद्धि चाहिए, तो वो है भगवान। तो जब तक आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती, भौतिक शक्ति काम नहीं कर सकती। तो ये आध्यात्मिक शक्ति वैसे एक है, लेकिन ये अलग अलग तरह के कार्य कर सकती है, और जिस तरह से कार्य करती है उस तरह से इस एक आध्यात्मिक शक्ति के अलग अलग आते हैं। जैसे समझिए कि एक सेवक है, वो कभी कभी मालिक की गाड़ी चलाता है, तब उसको क्या कहते हैं? ड्राइवर। और अपने मालिक को घर ले आने के बाद में रसोई घर में जाके खाना पकाता है, तब उसको क्या कहते हैं? रसोईया। फिर कभी कभी और कोई दूसरे काम करता है, तो जब मालिक दफ्तर के अंदर कोई काम है, कागज इधर से उधर ले जाना, वो करता है, पहरा देता है घर का दफ्तर का, तब उसको क्या कहते हैं? चौकीदार या दरवान या जो भी कहें, वॉचमैन। तो ये आदमी ये वॉचमैन है या ये रसोईया है या क्या है? ये ड्राइवर है कि क्या है? कौन है? सेवक है, लेकिन जब वो रसोई का काम करता है तो उसको रसोईया कहते हैं, पहरेदारी का काम करता है तो उसको चौकीदार कहते हैं। है वही व्यक्ति, लेकिन अलग अलग काम करता है तो उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह से मालिक हैं श्री कृष्ण, और उनकी सेवा में अनंत शक्तियां हाजिर हैं, हाथ जोड़कर। है वैसे एक शक्ति, लेकिन यही एक शक्ति अनेक कार्य कर सकती हैं, तरह तरह से भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। प्रमुखतः ये एक शक्ति तीन तरह के कार्य करती है, इसलिए इसके तीन नाम दिए जाते हैं। एक है संधिनी, संधिनी शक्ति, दूसरा है संवित शक्ति, और तीसरी है लादिनी शक्ति। संधिनी शक्ति वो शक्ति है भगवान कृष्ण की, अंतरंगा शक्ति, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण अपने ही अस्तित्व को बनाए रखते हैं। कृष्ण के अस्तित्व का आधार है ये संधिनी शक्ति, और इस संधिनी शक्ति से सब कुछ आधारित, इसके ऊपर सब कुछ आधारित होता है। आध्यात्मिक जगत, भगवान कृष्ण के माता पिता, उनके मित्र, उनका पलंग, उनके आभूषण, उनकी बांसुरी, कृष्ण का रूप, कृष्ण का नाम, कृष्ण का धाम, कृष्ण का यश, ये सब कृष्ण के संधिनी शक्ति पे आधारित है। इसको सत शक्ति कहते हैं। और फिर है संवित, संवित, वित मतलब ज्ञान, विद धातु जानना। ये शक्ति वो है जिससे कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को जान सकते हैं, और जिस शक्ति से हम या जीव भगवान को जान सकते हैं, यह है संवित शक्ति, यह है चित्त, और तीसरा है लादिनी शक्ति। लादिनी शक्ति मतलब वो शक्ति जिससे कि भगवान श्री कृष्ण को दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, या तो फिर जीवों को भगवान कृष्ण की कृपा से दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये तीन तरह की शक्तियां हैं, संधिनी, संवित और लादिनी है एक शक्ति, लेकिन जब वो कृष्ण और कृष्ण से संबंधित जो भी कुछ है उनके अस्तित्व का आधार बनती है तो वो शक्ति को संधिनी शक्ति कहते हैं, और यही शक्ति जब ज्ञान प्रदान करती है इसको संवित शक्ति कहते हैं, और यही शक्ति जब आनंद प्रदान करती है तो इसको लादिनी शक्ति कहते हैं। और इन तीनों शक्तियों का विकृत रूप इस भौतिक जगत में पाया जाता है। संधिनी शक्ति से भगवान के धाम में तरह तरह की विविधता पाई जाती है, तो इस संधिनी शक्ति के विकृत रूप से हम यहां पर भी विविधता देखते हैं, जिससे कि हमें भगवान के धाम का एक झलक मिलती है। अगर यहां इतनी विविधता है तो अवश्य भगवान के धाम में भी कितनी विविधता होगी। यहां पेड़ हैं, पक्षियां हैं, पशु हैं, पुरुष स्त्री हैं तो वहां पर भी है भगवान के धाम में, लेकिन यहां विकृत रूप है। संविद शक्ति, संविद शक्ति जब शुद्ध है तो इससे हम श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में जान सकते हैं। ये संविद शक्ति भौतिक जगत में विकृत रूप में काम करती है तो इससे हमें केवल भौतिक ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब हमारे भौतिक इंद्रियों से हम भौतिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। रास्ते में जाते हुए कोई आदमी गाड़ी देख रहा है, समझता है कि यह गाड़ी है, तो यह संविद शक्ति का विकृत रूप है। और कभी कभी एक अपरोक्ष रूप में, इनडायरेक्ट रूप में, जब केवल निराकार ब्रह्म का झलक मिल जाता है व्यक्ति को, यह भी संविद शक्ति का एक अपरोक्ष रूप है। वैसे डायरेक्ट नहीं है ये, लेकिन जब व्यक्ति को वास्तव में जानकारी हो जाती है, उनका भी धाम है, उनका नाम, लीला, गुण, रूप इत्यादि सब चिन्ह है, आध्यात्मिक है, तब हम समझ सकते हैं कि वास्तव में इसके अंदर अभी संविद शक्ति काम कर रही है, संविद शक्ति का विकास हो रहा है। इसलिए ये कथाएं भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये संविद शक्ति से, इस संविद शक्ति के कार्य है जो हमको ज्ञान दे रहे हैं कि कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, भगवान का धाम क्या है, उनका नाम क्या है। कृष्ण भगवान भी अपने आप को अपने शक्तियों के द्वारा ही जानते हैं, संविद शक्ति से। भगवान की शक्तियों में और हमारी शक्तियों में अंतर है। हमारी शक्तियां कभी भी फेल हो जाती हैं, किसी भी समय। हम सबको अनुभव है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं फिर भूल जाते हैं, खास करके विद्यार्थी बहुत पढ़ाई करके आते हैं और कोई एक प्रश्न आता है, उसको अरे हमने पढ़ा था लेकिन भूल गए, क्या है इसका उत्तर, भूल जाते हैं। तो स्मृति एक शक्ति है, इसीलिए स्मृति शक्ति कहते हैं, है ना, इसकी स्मृति शक्ति बहुत तेज है, मतलब ये भी एक शक्ति है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है फेल हो जाती है, असफल हो जाती है, हमारे काम के नहीं आती है। उसी तरह से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में हमारी शारीरिक शक्ति हमारे साथ में नहीं देती, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन शक्ति क्षीण हो जाती है, हमारे साथ नहीं रहती है। हमारा धन, हमारा पैसा, ये भी हमारी शक्ति है, ये भी हमारा हमें धोखा दे सकती है। तो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो इस जगत में, उसके पास कितने भी शक्तियां क्यों ना हो, बुद्धि, शारीरिक बल, पैसा, नौकर चाकर, मान सम्मान, ये सब शक्तियां हैं, लेकिन ये सब हमको धोखा दे सकती हैं, बल्कि देंगी, ये सब हमारे वश में नहीं रहती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान होने के नाते उनके अनंत असंख्य शक्तियां सदैव उनके नियंत्रण में रहते हैं, 100% उनके नियंत्रण में रहते हैं। एक भक्त बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था, अंग्रेजी में एक रहस्य है और उसको कहते हैं इररेजिस्टिबल फोर्स अगेंस्ट द इमूवेबल ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसी शक्ति जिसका सामना कोई नहीं कर सकता, ऐसे एक वस्तु के खिलाफ कार्य कर रहा है जिसको कोई हिला नहीं सकता, न हिलने वाला वस्तु और सबसे शक्तिमान शक्ति, दोनों का टक्कर हो तो क्या हो सकता है। तो किसी को प्रभुपाद ने पूछा था कि क्या कृष्ण ऐसे कोई पहाड़ बना सकते हैं जिसको कोई उठा नहीं सकता, और फिर क्या कृष्ण उसी पहाड़ को उठा सकते हैं जिसको कि उठाना संभव नहीं है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि हां, श्री कृष्ण ऐसे पहाड़ को बना भी सकते हैं जिसको कोई उठा नहीं सकता, और खुद श्री कृष्ण, मतलब श्री कृष्ण के अनंत शक्तियां, इनकी शक्ति की मात्रा जो है इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, लेकिन परंतु ये शक्तियां हमेशा कृष्ण के काबू में, नियंत्रण में रहती हैं। ये है श्री कृष्ण और हम में अंतर। तीसरी शक्ति, उनकी लादिनी शक्ति से कृष्ण को दिव्य आनंद मिलता है। यही दिव्य आनंद का विकृत रूप इस भौतिक जगत में विषय भोग के रूप में प्रकट होता है। यहां जो भी बद्ध जीव विषय भोग का आनंद लेना चाहते हैं वो सच्चा आनंद नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नते बुध। ये जो भोग है विषय भोग जो कि विषयों के स्पर्श से यही संस्पर्श जा भोगा, ये भोग क्या है? दुख योनया, योनी मतलब उद्गम। तो ये संसार का जो भोग है ये केवल दुख का कारण है। भोग दुख योनया एवते मतलब निश्चित ही ये संसार का भोग दुख है। तो ये संसार का आनंद आनंद नहीं है, ये तो दुख है, क्योंकि ये असली लादिनी शक्ति का विकृत रूप है ये, जिससे कि हम दुख को सुख समझ बैठते हैं। वास्तविक आनंद सुख क्या है हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब संवित शक्ति के प्रभाव से हम जान सकेंगे कि श्री कृष्ण भगवान है और हम फिर भगवान की सेवा में लगेंगे, इस विषय भोग से हम दूर रहेंगे, तो फिर बस क्या करेंगे भगवान? हमको वो लादिनी शक्ति हृदय में थोड़ा प्रदान करेंगे। लादिनी शक्ति का निर्माण या उद्गम हमारे हृदय में होगा। कण मात्र से इतना एक बूंद का भी छोटा सा हिस्सा, और इस लादिनी शक्ति के एक बूंद का भी छोटा सा कण भी किसी व्यक्ति के हृदय में आ गया तो वह आनंद से पागल हो जाएगा। इतना आनंद है ये, असहनीय आनंद। यह हमारा अनुभव है कि लोगों को कभी कभी इतना दुख हो जाता है, इतना दुख हो जाता है, इतना असहनीय हो जाता है कि वो आत्महत्या कर देते हैं, या ऐसे कोई भयंकर काम कर देते हैं जैसे 10-20 लोगों को जाके गोली से उड़ा दिया। आदमी पागल हो जाता है दुख से कभी कभी। ऐसी घटनाएं हम लोग अखबार में पढ़ते भी हैं। लेकिन आदमी आनंद से भी पागल हो सकता है, सच्चे आनंद से। और जब ये लादनी शक्ति किसी व्यक्ति के किसी जीव के हृदय में प्रकट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? भगवत प्रेम, कृष्ण भक्ति। तो भक्ति क्या है, भगवत प्रेम क्या है? केवल ये लादनी शक्ति का प्राकट्य है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा करते हैं किसी जीव के ऊपर, वो कहते ठीक है लादिनी शक्ति प्रकट हो जाए, मतलब दिव्य आनंद इसको मिले, इसका मतलब है उसे भगवत प्रेम हो जाता है। मतलब सच्चे प्रेम में और सच्चे आनंद में कोई अंतर नहीं है। सच्चा प्रेम मतलब भगवत प्रेम, सच्चा आनंद मतलब भगवत प्रेम का आनंद। इस संसार में न तो सच्चा प्रेम है न सच्चा आनंद है। यहां का प्रेम उस सच्चे प्रेम का विकृत रूप है और यहां का आनंद वहां के सच्चे प्रेम का विकृत रूप है। तो यहां झूठे प्रेम में भी लोगों को इतना आनंद मिलता है ऐसे प्रतीत होते हैं, कराते हैं, लेकिन क्योंकि लोग इसमें ज्यादा आशा रखते हैं आनंद के लिए, इसमें से सबसे ज्यादा दुख मिलता है। इस दुनिया के प्रेम तथा कथित प्रेम की वजह से ज्यादा दुख खून इत्यादि होते हैं। अमेरिका से एक भक्त बता रहे थे कि जब किसी व्यक्ति का खून होता है अमेरिका में, तो पुलिस सबसे पहले उसके जो निकट के लोग हैं उनकी जांच करते हैं। ज्यादा से ज्यादा खून ऐसे लोगों ने किया होता है जो उनके पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, मित्र हैं, ऐसे ही कोई, क्योंकि पहले बहुत प्रेम था। लेकिन ये संसार का नियम ऐसे है, जो पहले मीठी चीज लगती है बाद में कड़वी हो जाती है, और इतना कड़वा हो जाता है वो चीज, वो संबंध, कि घृणा होने लगती है, इतना द्वेष होने लगता है, और ये घृणा इतनी तीव्र हो जाती है कि आदमी खून भी कर डालता है उस व्यक्ति को। पति पत्नी को खून के खून कर देते हैं, पत्नी पति के खून कर देते हैं। ये है संसार का प्रेम, विकृत रूप है। लेकिन फिर भी जब इतना दुख नहीं होता, फिर भी लोगों को लगता है कितना आनंद है इसमें। तो साधारण संसार के प्रेम में इतना आनंद हो विकृत रूप से इतना आनंद हो तो सच्चे रूप में कितना आनंद होगा। तो ये लादिनी शक्ति का उदय एक बूंद मात्र में भी किसी व्यक्ति के हृदय में होता है, उसको कृष्ण प्रेम कहते हैं। तो कृष्ण प्रेम मतलब लादिनी शक्ति, मतलब आनंद, आनंद मतलब कृष्ण प्रेम। बस कृष्ण प्रेम होगा तो आनंद होगा, और अगर आनंद चाहिए तो कृष्ण प्रेम होना चाहिए, नहीं तो आनंद नहीं मिल सकता। कृष्ण प्रेम के अलावा आनंद हो ही नहीं सकता। तो जब यह कृष्ण प्रेम किसी व्यक्ति के हृदय में आता है तो फिर कृष्ण की सेवा करते करते इसका विकास होने लगता है, वृद्धि होती है, ये ज्यादा से ज्यादा गाढ़ होने लगता है, तीव्र होने लगता है। और ये भगवत प्रेम का जो सार है उसको भाव कहते हैं। और ये गाढ़ा 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 होते 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 इसका और सार बनता है। तो ये भाव का सार है या इसकी सर्वोच्च स्थिति है महाभाव। तो लादिनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम, भगवत प्रेम का सार है भाव, भाव का सार या सर्वोच्च स्तर है महाभाव। और ये महाभाव की जो मूर्तिमान स्वरूप है वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी इसका मतलब है कि ये भगवान श्री कृष्ण के आनंद प्रदान, दिव्य आनंद प्रदान करने वाली शक्ति की गाढ़ 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 रूप है। इनके सार के सार के सार के सार ये जब रूप धारण करते हैं इनको श्रीमती राधा रानी कहते हैं, मूर्तिमान स्वरूप। वैसे राधा रानी का रूप नित्य है, जैसे श्री कृष्ण का रूप नित्य है, जैसे उनकी शक्तियां नित्य हैं, तो ये है श्रीमती राधा रानी। तो आपने सोचा होगा कि हम राधाष्टमी के दिन राधा रानी की चर्चा कर रहे हैं तो इतना सब शक्तियां ये वो के बारे में क्या, तत्व ज्ञान के बारे में क्या जरूरी है, क्या जरूरत है? क्योंकि जब हम भगवान की शक्तियां समझेंगे तो हम ये समझ सकेंगे कि श्रीमती राधा रानी वास्तव में कौन है। अब ये सब जानने के बाद कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि अरे श्रीमती राधा रानी तो केवल एक गोपिका स्त्री है। हाँ, गोपिका स्त्री है, लेकिन केवल शब्द मत कहना, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का वास्तव में स्थान क्या है ये श्री रूप गोस्वामी ने पुराणों से और अन्य शास्त्रों से इसका अध्ययन करके संशोधन करके हमारे समझ के लिए, हमारी जानकारी के लिए कृपा करके प्रस्तुत किया है। तो श्रीमती राधा रानी है भगवान कृष्ण की परम शक्ति। कृष्ण है परम शक्तिमान, मूल शक्तिमान, और श्रीमती राधा रानी है परम शक्ति या मूल शक्ति। जैसे जितने भी सारे शक्तिमान वस्तुएं हैं वो श्री कृष्ण से उनकी शक्ति आती है, तो सारी शक्तियां जो हैं वो भी श्रीमती राधा रानी से आती हैं। ये है श्रीमती राधा रानी का स्थान। तो राधा और कृष्ण, शक्ति और शक्तिमान, इस तरह से राधा रानी की पहचान दी हुई है पुराणों में। तयोर अपि उभयोर मध्ये राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयं गुणेर अतिवरीयसी। इन दोनों में, किन दोनों में? चंद्रावली और राधा रानी। हमने बताया कि सारे गोपियों में से दो सर्वश्रेष्ठ थे, चंद्रावली और राधा रानी। चंद्रावली गोपी कौन है? श्रीमती राधा रानी के पिताजी का नाम क्या है? वृषभानु। तो वृषभानु के एक भाई हैं जिनका नाम है चंद्रभानु। तो जैसे वृषभानु की पुत्री या कन्या है राधा रानी, तो चंद्रभानु की कन्या है चंद्रावली। तो गोलोक वृंदावन में कई दल हैं, गोपियों के दल, जिनमें चंद्रावली का एक दल है, राधा रानी का एक है, और ये दोनों आपस में प्रतिद्वंद्वी हैं, स्पर्धा होती है, दिव्य स्पर्धा है। यहां जगत में होता है वैसे नहीं, दोनों को दिव्य आनंद आता है, सबको दिव्य आनंद आता है ऐसे स्पर्धा में। तो इन दोनों में से राधिका सर्वथाधिका, राधिका हमेशा सदैव श्रेष्ठ है। क्यों? महाभाव स्वरूप स्वरूपेयम अयम, मतलब राधा रानी ये महाभाव की स्वरूपिणी है। महाभाव का जब स्वरूप होता है उस स्वरूप को श्रीमती राधा रानी कहते हैं। गुणेर अतिवरीयसी, सर्वश्रेष्ठ गुणों से सुशोभित होती हैं श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनकी जैसे कोई भक्ति नहीं कर सकता, उनके जैसा भक्त न आज तक हुआ है न है न आगे हो सकता है। श्रीमती राधा रानी अपने ही श्रेणी में है, बल्कि वो तो भक्ति के सागर हैं, समुद्र हैं। अगर हमें भक्ति चाहिए तो हमें उन्हीं से दान में स्वीकार करना होगा, नहीं तो और हमारे लिए संभव नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को यहां सिंचाई करना है, खेती करना है, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर तट जमीन नदी के तट के पास उसे कोई जमीन मिल गई तो बहुत अच्छा, वो जितना चाहे उतना नदी से पानी खींच सकता है। अगर नदी नहीं हो, पानी नहीं हो, तो कहां से पानी लाएगा, वो इस्तेमाल करेगा? तो वो किसान का खुद का पानी नहीं है, नदी से वो लेता है। नदी का हृदय उदार होता है तो पानी दे देती है नदी। ठीक उसी तरह से श्रीमती राधा रानी भक्ति नाम के नदी की गंगोत्री हैं, जिनसे भक्ति उत्पन्न होती है। तो अगर हमें चाहिए भक्ति तो हमें श्रीमती राधा रानी से प्राप्त करना होगा। श्री कृष्ण भी स्वयं नहीं दे सकते हैं। श्री कृष्ण का सुंदर रूप सर्व आकर्षक है ना, इसलिए उसको कृष्ण कहते हैं। सर्व आकर्षक रूप है, इसका नाम है कृष्ण। तो संधिनी शक्ति से कृष्ण का रूप बनाया हुआ है। तो श्रीमती राधा रानी का रूप लादिनी शक्ति से बनाया हुआ है। तो सोचिए, संधिनी शक्ति से श्री कृष्ण का रूप बना है जो कि बहुत सुंदर है, सर्व आकर्षक है, लेकिन श्रीमती राधा रानी का रूप लादिनी शक्ति से बना हुआ है। तो यह इतना आकर्षक है कि सर्व आकर्षक श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान होने के बावजूद वो उनकी परम शक्ति श्रीमती राधा रानी के वश में रहते हैं। इसलिए भक्ति भी श्री कृष्ण के हाथ में नहीं है, वो श्रीमती राधा रानी के हाथ में है। तो अगर हम श्रीमती राधा रानी के सेविकाओं को प्रसन्न करेंगे, श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी, राधा रानी प्रसन्न हुई तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह से राधा कृष्ण ये युगल जोड़ी है, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। इनको प्रसन्न करके हम हमारे जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम यह भक्ति के सर्वोच्च सिद्धांत हैं। श्री कृष्ण के लिए वो प्रेम के एकमात्र पात्र व्यक्ति हैं। अगर श्रीमती राधा रानी नहीं हो तो श्री कृष्ण को कोई आनंद नहीं आता। श्री कृष्ण के पास सब कुछ होते हुए भी अगर श्रीमती राधा रानी नहीं है तो वो संतुष्ट नहीं होते हैं। एक बार ऐसे हुआ था कि रासलीला कर रहे थे श्री कृष्ण अन्य गोपियों के साथ, और उस समय श्रीमती राधा रानी ने देखा कि अरे, मैं होते हुए इतने सारे गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं श्री कृष्ण, तो वहां से निकल गई। जब श्रीमती राधा रानी को नहीं देखा श्री कृष्ण ने, तो वो इतने विचलित हो गए कि वो रास स्थली को छोड़ गए और श्रीमती राधा रानी को ढूंढते हुए इधर उधर भटकते रहे, और सारे गोपियां वो उनके जगह विचलित हो गए कि अरे, हमको छोड़कर श्री कृष्ण चले गए, कहां चले गए श्री कृष्ण? और उस समय उन्होंने ये श्लोक कहा कि श्रीमती राधा रानी का स्थान कितना विशेष है कि श्री कृष्ण इनसे इतना प्रेम करते हैं कि अन्य गोपियां होते हुए भी अगर राधा रानी नहीं है तो श्री कृष्ण उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। अनुयाराधितो नूनं भगवान हरीश्वरः యన్నో విహాయ గోవింద ప్రీతోయామన అనయగ్రహ అనయారాధితో నూనం భగవాన్ హరిరీశ్వర. యన్నో విహాయ గోవింద ప్రీతోయామ అనయగ్రహ. ఆపస్ మే బాత్ కర్ రహీ హై ఔర్ వో కహతీ హై అనయ మత్లబ్ యే గోపీ కౌన్ సీ గోపీ నామ్ నహీ లియా ఉన్హోనే ఆరాధితః జిస్కే ద్వారా పూజే గయే హై జో పూజా కర్ రహీ హై ఆరాధనా కర్ రహీ హై కిస్కి పూజా కర్ రహీ భగవాన్ హరి ఈశ్వరః. యన్నో విహాయ గోవిందః ప్రీతోయామ అనయత్ రహః. విహాయ హమ్కు ఛోడ్కర్ చలే గయే హై హరి శ్రీ కృష్ణ భగవాన్ ఈశ్వరః గోవింద జిన్కా నామ్ హై హమ్కు ఛోడ్ కే చలే గయే కిస్కే లియే ఉస్ ఏక్ గోపీ కే లియే. తో ఇస్కా మత్లబ్ హై కి ఉస్ గోపీ నే అనయ ఆరాధిత నూనం ఉస్నే కిత్నే అచ్చీ తరహ సే కృష్ణ కి సేవా కి హోగి మత్లబ్ వో సర్వశ్రేష్ఠ కృష్ణ ప్రేమీ హోగి ఇసిలియే శ్రీ కృష్ణ హమ్ సబ్ కో ఛోడ్కర్ ఉస్ ఏక్ గోపీ కే పీచే గయీ. తో ఐసే శ్రీమతి రాధారాణీ కా మహత్వపూర్ణ స్థాన గోపియా బతలా రహీ హై కి శ్రీమతి రాధారాణీ హో ఔర్ కుచ్ భీ నహీ హో తో కృష్ణ సంతుష్ట హై. శ్రీమతి రాధారాణీ నహీ హో ఔర్ సబ్ కుచ్ హో తో కృష్ణ సంతుష్ట నహీ హై. తో కై బార్ యే లోగ్ ప్రశ్న ఉఠాతే హై కి అగర్ శ్రీమతి రాధారాణీ కా మహత్వ ఇత్నా హై తో శ్రీమద్ భాగవత్ మే రాధారాణి కా నామ క్యూ నహీ ఆతా. ఇస్కే జవాబ్ మే వైష్ణవ ఆచార్య సమ్జాతే హై ఆతా హై పరంతు గుప్త రూప్ మే. కిస్ శ్లోక్ మే కోయి బతా సక్తే హై కౌన్ సే శ్లోక్ మే శ్రీమతి రాధారాణి కా నామ ఆతా హై గుప్త రూప్ మే? జో జవాబ్ దేంగే ఉన్కో మహాప్రసాద్ కా ఏక్ లడ్డూ యా ఏక్ స్వీట్ మిలేగా. బహుత్ సరల్ హై, బహుత్ సరల్ హై యే జవాబ్. మే తో ఏక్ లడ్డూ మిల్ గయా. ఇసి శ్లోక్ మే బతాయా హై అనయ ఆరాధితః. ఆరాధిత ఇస్సే ఆతా హై రాధా, జో సబ్సే శ్రేష్ఠ ఆరాధనా కర్తీ హై గోవింద కి, శ్రీకృష్ణ కి. తో గుప్త రూప్ మే ఛుపా కర్ రాధారాణి కా నామ సుఖదేవ్ గోస్వామి నే బోలా హై. తో హై యహాన్ పర్. తో దూసరీ బాత్ ఫిర్ స్పష్ట రూప్ సే క్యూ నహీ కహా సుఖదేవ్ గోస్వామి నే? పహలీ బాత్ హై కి సుఖదేవ్ గోస్వామి కైసే నహీ కహతే రాధారాణి కా నామ. సుఖదేవ్ గోస్వామి హై కౌన్ కృష్ణ లీలా మే? హమ్ జన్మాష్టమి కే పహలే కృష్ణ కథా మే చర్చా కర్ రహే థే ఇస్కే బారే మే. वो कौन है अपने सिद्ध देह में मूल रूप में? शुक, श्रीमती राधा रानी के शुक या तोते हैं, उनके पोपट हैं जो उनको जाके नाना प्रकार के खबर देते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं. तो राधा रानी के सेविका है वो. तो क्या वो यहां पर सुखदेव गोस्वामी का रूप लेकर भागवत का रस और भी मीठा करके सुखात शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम बता भागवतम रसम, इतना मीठा रस और मीठा करने में वो श्रीमती राधारानी का नाम न लें, ये कैसे संभव है? उन्होंने लिया लेकिन गुप्त रूप में. तो गुप्त रूप में क्यों लिया, इसके पीछे भी कारण है, दो कारण. एक कारण ये है कि सुखदेव गोस्वामी के सामने एक काम था करने के लिए. क्या काम था वो? 7 दिन में परीक्षित महाराज को सारा श्रीमद् भागवत सुनाना था. अगर सुखदेव गोस्वामी राधारानी का नाम लेते तो क्या हो जाता? केवल नाम लेते ही भाव विभोर होके बेहोश हो जाते और 6 महीने के लिए रह जाते. अब 6 महीने थे कहां, केवल 7 दिन थे। इन 7 दिनों में परीक्षित महाराज को सब कुछ सुनाना था, और अगर 6 महीने सुखदेव गोस्वामी भाव विभोर होके रह गए तो बेचारे परीक्षित महाराज का क्या होता। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने अपने आप को रोक दिया। और वैष्णव आचार्य ये भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी सुखदेव गोस्वामी के हृदय से उनके जो भक्ति के भाव हैं, जो उमड़ रहे थे तूफान की तरह, उनका शमन कर दिया, थोड़ा उनको शांत कर दिया, सांत्वना दे दी। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान चाहते थे कि सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से वृंदावन के गोपियों का गुणगान हो, और खास करके श्रीमती राधारानी का गुणगान हो, और ऐसे गुणगान हो उनका नाम भी न ले सीधे तरह से और गुणगान भी हो जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव गोस्वामी के अंदर के हृदय के अंतःकरण के भावनाओं को इस तरह से एडजस्टमेंट कर दिया, वो गोपियों की लीलाओं के बारे में वर्णन भी कर पाए और बेहोश भी नहीं हो गए। इसलिए गुप्त रूप में श्रीमती राधारानी का नाम आता है श्रीमद् भागवत में, और ये श्लोक है सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। वैसे जब कृष्ण लीला इतने सारे पुराणों में पाए जाते हैं तो और एक पुराण भागवत पुराण या श्रीमद् भागवत लिखने की क्या आवश्यकता थी। वैसे अन्य पुराणों में भी श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है अवश्य, परंतु केंद्र का विषय नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये नहीं है अन्य पुराणों में। जैसे श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, अन्य कई भी लीलाएं हैं वहां पर, लेकिन श्रीमद् भागवत का एकमात्र उद्देश्य है कि केवल कृष्ण लीला। यहां कृष्ण नायक है, एकमात्र नायक है कृष्ण और उनके अवतार, और खास करके दशम स्कंद में तो केवल वृंदावन के कृष्ण की लीला है। फिर आगे चल के मथुरा और द्वारका की लीलाएं भी हैं, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण के वृंदावन की लीलाएं, ब्रज की लीलाएं, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है उनके गोपियों के साथ में लीलाएं, सबसे सर्वोच्च शिखर कृष्ण लीला की। तो क्योंकि अन्य पुराणों में इतने विस्तार में श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाओं का वर्णन नहीं है, इसलिए श्रीमद् भागवत बोला गया सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, और गोपियों में से भी श्रीमती राधारानी का गुणगान करने के लिए, उनके यश उनके गौरव का को फैलाने के लिए श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कही। इस तरह से हमें जानना है कि जहां सर्वश्रेष्ठ गोपियों का वर्णन आता है उनमें अवश्य श्रीमती राधारानी भी हैं। श्रीमती राधारानी के बिना कृष्ण लीला का कोई मतलब नहीं, कृष्ण लीला में श्री कृष्ण को कोई रस नहीं आता। इसलिए राधा और कृष्ण दोनों साथ में, दोनों को अलग कभी भी नहीं कर सकते। और वृंदावन में रहकर कई सुंदर लीलाएं करते रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि भौम लीला है और परकी रस है, और ऐसे लगता है बाहरी दृष्टि के लिए कि श्रीमती राधारानी का विवाह हुआ है अभिमन्यु नाम के गोप के साथ, और अभिमन्यु की मां अर्थात श्रीमती राधारानी की सांस है जटिला, तो छुप छुप के राधारानी और कृष्ण का मिलन होता है, इसमें थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, इसमें थोड़ा लीला का रस बढ़ जाता है गोलोक वृंदावन में। तो श्री कृष्ण कई बार ऐसे कई युक्तियां करते हैं या षड्यंत्र करते हैं जिससे कि वो राधारानी को मिल सके और लीलाएं कर सके। तो एक लीला आज सुनाएंगे। एक बार हुआ ये कि श्री कृष्ण अपने घर में कमरे के अंदर गए जहां की माता यशोदा थी, और वहां माता यशोदा के सामने एक बड़ा बक्सा था, और उसके अंदर यशोदा माता बहुत अच्छे अच्छे चीजें डाल रही थी। तो कृष्ण भगवान अंदर गए, मां ये क्या कर रही हो, क्या डाल रही हो अंदर, क्यों डाल रही हो, किसके लिए डाल रही हो, तुम्हें क्या मतलब इससे, जाओ खेलो, जाओ बाहर जाओ खेलो। नहीं, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे कमरे के अंदर। क्या ये मेरे लिए है, यह मेरे भाई बलराम के लिए है? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई बलराम के लिए इससे भी बड़े बक्से रखे हैं अंदर, वहां वो तुम्हें बाद में दिखाऊंगी। तो ये किसके लिए है? हाँ ठीक है मैं सुनाती हूं बैठो। तो माता यशोदा कहने लगी, देखो जिस तरह से मेरे भाग्य खुल गए तुम्हारे रूप में, मेरे पूर्ण पूर्व जन्मों के तपश्चर्या तपस्या जो है उनके मूर्तिमान रूप तुम हो, ठीक उसी तरह से मेरे प्रिय सखी कीर्तिदा देवी और उनके पति वृषभानु महाराज कि जो पूर्व किए हुए हजारों लाखों सालों की तपस्या अब इस जीवन में एक कन्या या पुत्री के रूप में वहां प्रकट हुए हैं, और ये कन्या ये लड़की इतनी सद्गुण संपन्न है कि ये गुण जो हैं वो ज्यादा सुंदर बन जाते हैं इस लड़की का आश्रय लेने से। वैसे अगर किसी भी लड़की के अंदर ऐसे गुण हो जैसे कि सरलता, नम्रता, लज्जा, सौंदर्य, बुजुर्गों का आदर करना इत्यादि, तो वो लड़की बहुत ही अच्छी बन जाती है दूसरों की दृष्टि में, बहुत आकर्षित हो जाती है। तो दूसरे साधारण लड़कियां ऐसे गुणों को स्वीकार करके सुंदर बन जाती हैं, लेकिन ये जो लड़की है इसकी विशेषता इतनी है कि ये सारे गुण इस लड़की के आश्रय में हैं, और ये गुण ज्यादा सुशोभित हो गए हैं इस लड़की का आश्रय लेने से, ये गुण ज्यादा सुंदर बन गए हैं। और इस लड़की का नाम है श्री राधा, और वो निवास करती है वहां पर बरसाना में। तो जब कृष्ण भगवान ने राधा का नाम सुना दिव्य आनंद आया, लेकिन अपने आप को रोक लिया, और ठीक है तो राधा के लिए क्या अंदर बक्से में डाल रहे हो? तो यशोदा माता ने कहा, देखो यहां कई तरह तरह की चीजें मैं डाल रही हूं, यहां एक और है चंदन, कस्तूरी, कुमकुम इत्यादि, जिनसे कि नाना प्रकार के पदार्थ बन सकते हैं जिनसे कि शरीर को बहुत सुगंधित किया जा सकता है, और यहां पर है नाना प्रकार के सुंदर अलग अलग रंग बिरंगी कपड़े जो उसको पहनने के लिए हैं, और यहां पर है नाना तरह के गहने आभूषण जो कि कीमती हीरों से, रत्नों से इत्यादि मणियों से बने हुए हैं, और ये सब मैं डाल रही हूं और अभी भेज रही हूं राधा के पास। अभी अभी तुम्हारे पिताजी नंद महाराज के साथ राधा के जो पति है अभिमन्यु वो कोई गांव के मामले को चर्चा कर रहे हैं, तो अभिमन्यु घर जाने के पहले मुझे नमस्कार करने आएगा तो मैं ये बक्सा जो है उसके हवाले वापस राधा के पास भेज दूंगी। और अचानक लवंग लतिका नाम की एक मंजरी अंदर आई और कहने लगी कि हे यशोदा देवी, दो सराफ आए हैं आपके पास, आपने ये बुलाए थे उनको, रंगण और तंगण उनका नाम है। तो यशोदा ने उनका नाम सुनकर बहुत खुश हो गई, हाँ कृष्ण के लिए मुझे बहुत सारे गहने बनाने थे जैसे कि उनका कुंडल है इत्यादि, तो बनाने के लिए मैंने ऑर्डर दिया था, अभी देखते हूं। तो बाहर गई जल्दी से, और जाते जाते एक गोपी धनिष्ठा से कह के गई कि धनिष्ठा जरा नजर रखना यहां पे, मैं अभी अभी आ रही हूं। तो यशोदा माता जैसे बाहर गई तो श्री कृष्ण के मित्र सुबल आदि सब ग्वाल बाल वहां पर अंदर चले आए, गोप बालक, और कृष्ण भगवान की आंखों में मस्ती की चमक थी। तो कृष्ण भगवान ने गोपों को अलग से बुलाया, कोने में कोई बातचीत हुई उनके बीच में, और फिर श्री कृष्ण ने धनिष्ठ से कहा कि आप ऐसे करना, हमारे कार्य में आप साथ देना, इसके अंदर जो भी कुछ है ये अलग से आप ले जाओ, और अलग से ले जाके वहां दे जाओ राधा रानी के पास। और फिर श्री कृष्ण ने क्या किया, वो बक्सा बक्से के अंदर खुद बैठ गए, और फिर सुबल ने बक्सा बंद कर दिया, और अंदर श्री कृष्ण हंस रहे हैं, अब मैं जाऊंगा सीधे कहां, राधा रानी के पास, और कौन मुझे ले जाएगा, उसका पति ही मुझे ले जाएगा, और पति को पता भी नहीं चलेगा। तो फिर यशोदा मैया अंदर आ गए वापस अपना काम निपटा के, और उधर अभिमन्यु ने अपना काम समाप्त कर दिया नंद महाराज के साथ, वो भी यशोदा मैया के नमस्कार करने आ गए। तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है चले जाओ, लेकिन अभिमन्यु देखो तुम्हारे सुंदर पत्नी राधा रानी के लिए मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े गहने इत्यादि सब इस बक्से के अंदर बंद करके रखे हैं, तो अपने सर पर उठा कर ले जाओ और दे दो वहां पर, और जाते जाते बताना कि मैंने ये संदेश दिया है कि हे राधा, हे कीर्तिदा के गौरव को बढ़ाने वाली, हे मेरे आंखों के केंद्र बिंदु, तुम इस अच्छे अच्छे गहनों को कपड़ों को स्वीकार करो, इनको पहनो। तो अभिमन्यु बड़ा खुश हो गया, अरे वाह, अभी इतना धन, इतना इतने हीरे जवाहरात मोती रत्न, तो बड़े खुशी से माता यशोदा को धन्यवाद देते हुए वो बक्सा उठा दिया अपने सिर पे। अब बक्सा तो काफी भारी था, लेकिन उस बक्से का वजन बिल्कुल अनुभव नहीं हुआ अभिमन्यु को, जिस तरह से जब एक बैंक को लूटता है कोई डकैत और उसके सर में बक्से में 10 करोड़ रुपए रहते हैं, कितना भी वजन हो आदमी उठा के उसको शक्ति कहां से आएगी, लगता है कि वो बक्से का वजन तो कुछ भी नहीं, कपास के बराबर है। तो अभिमन्यु को लगा कि अरे वाह, ये तो इतने हीरे मोती जमा, मैं तो कितना अमीर हो गया, मैं तो अब मैं तो 10 करोड़ गाय खरीद सकता हूं, और गोवर्धन मल्ला जैसे मेरा मित्र है, जैसे उसके घर में लक्ष्मी देवी निवास करती है वैसे मेरे घर में भी निवास करेगी लक्ष्मी देवी, मैं इतना धनी बन गया। ऐसे इच्छा में खुश होके अपने घर तक पहुंच गया, और ये वजन भी पता नहीं चला, और इतना खुश हो गया अभिमन्यु कि उसके रोंगटे खड़े हो गए, अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे शरीर में। अब साधारण दृष्टि से हमें लगे कि अभिमन्यु को इतना आनंद आया पैसे के विचार से, धन के विचार से, अभिमन्यु को भी ऐसे लगा कि धन पाया इसलिए मैं इतना आनंदित हूं, लेकिन यह आनंद पाने का सच्चा कारण क्या था कि वो आनंद के सबसे गाढ़ जो रूप है वो उनके बक्से में बंद है जो कि उनके सर के ऊपर है। तो आनंद के निखिले परमानंद, आनंद के जो सागर हैं जो कि सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को आनंद प्रदान करते हैं, वो गाढ़ रूप जो है उनके सर के ऊपर बैठे हैं, इसलिए उनको इतना आनंद आया। तो खैर जल्दी जल्दी से अभिमन्यु पहुंच तो गया अपने घर में यावट में, तो यावट में फिर से जब अभिमन्यु अपने घर में पहुंच गया, अपनी मां कुटिला से कहा, अरे मां देखो देखो मैं क्या लाया हूं, अभी हम लोग अमीर हो गए, धनी हो गए, हमारे पास इतने हीरे मोती सब आए, कहां से आए, यशोदा माता ने दिए राधा रानी के लिए। और कुटिला ने सुना बहुत खुश हो गई, जटिला क्षमा कीजिए, जटिला उनके मां का नाम था, कुटिला अभिमन्यु के बहन का नाम है, स्वभाव के दोनों एक ही जटिला और कुटिला। तो जटिला ने सुनकर बहुत खुश हो गई, हमारे घर में इतना धन आया, और वैसे भी अगर मेरा लड़का अभिमन्यु ने राधा रानी को इतना सब भेंट दिया तो हो सकता है राधा रानी अभी मेरे बेटे के ऊपर खुश हो जाए, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण आता है कृष्ण के साथ जाती है, संशय था जटिला को। तो अभी मेरा बेटा जो है ये सब देगा तो हो सकता है कि मेरी बेटी खुश हो जाएगी, इन दोनों के बीच में अच्छा संबंध हो जाएगा। तो जब राधा रानी और उनके सखियों को पता चल गया कि कोई बक्सा आया है जिसमें बहुत सारे हीरे मोती वगैरह हैं, तो सब खुश हो गई, अंदर आके सब छोटी छोटी लड़कियां थी, सब अंदर जाके सब बड़े आनंद से हाथ में ताली वगैरह मार के अभी बहुत सारा धन आ गया, और श्रीमती राधा रानी के शरीर में शुभ लक्षण प्रकट होने लगे, आंख का हिलना वगैरह वगैरह। तो श्रीमती राधा रानी एक सखी ललिता सखी से कहने लगी, ये जो घर है ये तो दुख का सागर है मेरे लिए। क्यों है दुख का सागर? क्योंकि यहां कृष्ण को अनुमति नहीं है ना आने के लिए, छुपे छुपे कृष्ण से मिलना पड़ता है, ये तो दुख का सागर है, यहां तो ये सब कुछ अशुभ ही अशुभ है, तो ऐसे अंधकार भरे घर में शुभ लक्षण कैसे प्रकट हो रहे हैं मेरे शरीर में, न जाने क्या हो रहा है। फिर ललित सखी ने कहा, देखो यशोदा मैया से ही एक धन आ रहा है, और यशोदा मैया ने संदेश भेजा है कि इसके अंदर एक मनोहर आभूषण है जो कि जिसे तुम अवश्य पहन लेना। तो मनोहर आभूषण मतलब कोई सोने रत्न का आभूषण भी हो सकता है, और मनोहर तो कृष्ण का नाम भी है जो मन को हरण कर लेते हैं, तो कृष्ण भी एक आभूषण है। तो राधा रानी को पता नहीं था अब तक कि क्या है, तो अभिमन्यु बड़े आनंद से आए कि देखो मैं क्या लाया हूं, तो अभिमन्यु ने बड़े आराम से रख, क्योंकि जटिला ने कहा था देखो ये बक्सा इतना भारी है हम महिलाएं इसको उठा नहीं पाएंगे, पुरुषों को उठाना पड़ेगा। तो अभिमन्यु ये ले जाओ राधा रानी के कमरे में रख दो और राधा रानी को आराम से इनको देखने दो, आनंद लेने दो इसमें, क्योंकि अंदर बहुत सारे सखियां थी तो अभिमन्यु भी वहां ज्यादा समय ठहर नहीं पाया। तो रख के वहां चले आए और फिर राधा रानी अच्छी तरह से दरवाजा वगैरह बंद कर लिया, देखो हमारे लिए इतने सारे हीरे रत्न वगैरह, देखो खोलो खोलो। और गोपी ने खोल दिया और खोल के अचानक क्या हो गया, खड़े हो गए ऊपर श्री कृष्ण। तो सबने देखा और श्री कृष्ण बड़े हसमुख चेहरे से खड़े हो गए, आ गया। तो सबको बड़ा आश्चर्य हो गया और वहां सब जोर जोर से हंसने लगे, अरे क्या हो गया, कैसे आ गया। तो उस समय कृष्ण भगवान कहने लगे कि देखो हाजिर है सबसे बड़ा आभूषण। तो ललिता देवी श्रीमती राधा रानी से मजाक करने लगे कि देखो सबके बुजुर्गों का, आपके साथ सारे बुजुर्गों का आदेश है, न केवल माता यशोदा ने यह संदेश भेजा है लेकिन जटिला ने और तुम्हारे पति ने भी कहा है कि ये आभूषण तुमको पहनने चाहिए। तो उस समय राधा रानी को कहा देखो ये कृष्ण ने बहुत छल कपट किया है, वास्तव में ये बड़ा चोर है, इसने जो यशोदा मैया ने जो आभूषण कपड़े वगैरह निकाले थे वो चोरी करके कहीं रख दिए और खुद इसमें बैठ के यहां आ गया। अब मैं जाती हूं जटिला देवी को, मेरे सास को बता देती हूं कि क्या मामला है। और उस समय ललिता देवी कहने लगी क्यों भैया कृष्ण ये सब क्या चल रहा है, यहां पर आकर ऐसे धोखेबाजी करके चोरी करके यहां पर आए हो, कहां है वो धन संपत्ति जो हीरे मोती ये सब कहां है, वो दे दो नहीं तो हम बुलाएंगे जटिला को। तो श्री कृष्ण बड़े मासूम मुंह बनाकर कहने लगे कि देखो इसमें मेरा क्या कसूर है, तुम्हारी सहेली इसकी तो आदत है मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाना। वैसे मैं क्या कर रहा था कि इसने खुद अपने पति से कहा कि जाके इसके बक्से में डाल के ले आओ, पति तो अभिमन्यु लेकर आया तो मेरा क्या कसूर। और वैसे हुआ क्या कि ये बक्से का सुगंध इतना अच्छा था कि मैं मेरे मित्रों के साथ खेल रहा था, सुगंध लेते लेते मैंने अंदर भी गया बक्से के अंदर और बक्से का ढक्कन बंद हो गया और फिर अभिमन्यु ने आके ले लिया तो मैं क्या करूं। तो इस तरह से श्री कृष्ण गोपियों के साथ में वाद विवाद करते रहे और अंदर बैठकर राधा रानी के संग का आनंद लेकर कृष्ण भगवान ने अपनी इच्छा पूर्ण कर दी। इस तरह से गोलोक वृंदावन में ऐसे, और श्री कृष्ण कोई ना कोई बहाना बनाकर कोई ना कोई छल कपट से षड्यंत्र से युक्ति से किसी न किसी तरह से गोपियों के साथ मिल ही जाते थे। तो यह वृंदावन का आनंद है, वृंदावन में ऐसी लीलाएं चलती रहती थी और चलती रहती हैं वर्तमान काल, क्योंकि वृंदावन की लीलाएं अनंत हैं, समाप्त नहीं होते हैं। आज राधाष्टमी के दिवस पर हमें श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय में भी वो इस लादिनी शक्ति अर्थात कृष्ण प्रेम का एक छोटे से बूंद का अंश भी प्रदान करें, जैसे कि हम भी जुगल किशोर श्री राधा कृष्ण के सेवा में हमेशा के लिए तत्पर रहें, जीवन की सफलता को हम प्राप्त करें। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री राधा गोकुलानंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जैसे आपने लादनी शक्ति के बारे में बताया
जी,
तो हमने श्रीमद् भागवत में पढ़ा है कि भरत महाराज भाव स्तर पर थे और बाद में प्रथम होकर के बाद में फिर जड़भरत हो गए तो भाव स्थिति में आ गई, और इसी तरह चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के ही स्वरूप में है। तो क्या हम समझ सकते हैं कृपा जी महाभाव स्थिति में थे और परम पूज्य राधा जी महाराज भाव स्थिति में और आप भगवत प्रेम की स्थिति में?
अब देखिए जो शास्त्र में बताया हुआ है उसके अनुसार ही हमें चलना है। जहां तक श्रीमती राधा रानी का स्थान है इसका वर्णन तो हम कर चुके हैं। जड़ भरत का जहां तक सवाल है हमें जानना है कि वो भाव भक्ति के स्तर में थे। भक्ति तीन स्तर में होती है। पहले स्तर को कहते हैं साधना भक्ति। साधना भक्ति के दो अंग हैं। पहला अंग है वैधि भक्ति, जिसमें विधि विधानों का पालन होता है, और दूसरा है रागानुग भक्ति, जिसमें विधि विधानों का पालन तो होता है लेकिन स्वाभाविक रूप से हम करते हैं, जबरदस्ती नहीं। और फिर ये जब और विकसित हो जाता है तो इसको भाव भक्ति कहते हैं, जिसमें तरह तरह के भाव प्रकट होने लगते हैं। और फिर ये भाव और भी ज्यादा विकसित हो जाता है तो प्रेम भक्ति के स्तर में हम पहुंच जाते हैं। भाव भक्ति के स्तर में भी किसी भी व्यक्ति का, भक्त का पतन हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, जैसे भरत महाराज के साथ हुआ था। प्रेम भक्ति में भी नौ स्तर हैं, और इन नौ स्तर में भी भक्त आगे 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 प्रगति करता है। दास रस में वहीं तक रह जाता है, सख्य रस में थोड़ा और आगे जाता है, वात्सल्य में और आगे, माधुरी में और आगे, और श्रीमती राधारानी सबसे आगे महाभाव में। वो महाभाव केवल श्रीमती राधारानी का है। इसलिए जड़ भरत का स्थान भी भाव भक्ति का स्थान है, महाभाव का नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण है, श्रीमती राधारानी के महाभाव को लेकर आए हैं, इसलिए वो चख पाए उसी भावना को, उसी प्रेम को, उसी आनंद अनुभव श्रीमती राधारानी करती थी। जहां तक अन्यों का सवाल है, अन्य आचार्यों गणों का सवाल है, इसके बारे में हमें अपने मन से सोचने का प्रयास नहीं करना चाहिए, स्पेक्युलेशन नहीं करना चाहिए, यह हमसे अपराध भी हो सकता है, हमसे कोई गलत निर्णय भी है। आचार्य सब तो हमारे लिए केवल आदरणीय है, बस हमारी यह स्थिति नहीं है कि हम ऐसे विश्लेषण करने के लिए जाएं कि कौन किस स्तर पर है, क्योंकि शुद्ध वैष्णव को समझने के लिए भी एक शुद्ध वैष्णव चाहिए। कौन कितना पहुंचा हुआ है वो एक शुद्ध वैष्णव ही समझ सकते हैं। इसलिए हमें, अगर हम लोग ऐसे करते जाएं कि ये इस स्तर पे हो सकते हैं, तो दूसरा कहेगा नहीं नहीं वो नहीं, ये इस स्तर पे है, तो ये तो हमारा स्तर नहीं ऐसे चर्चा करने के लिए। और जहां तक हमारे से है वो न कहें तो अच्छा, भागवत क्लास में कहना ठीक नहीं, हम तो भी वैदिक भक्ति के शुरुआत में हैं, तो वैदिक भक्ति करते करते आशा है एक न एक जन्म में आगे कुछ हो सकती है प्रगति। तो खैर, हमारे वैदिक भक्ति की अवस्था में हम केवल विधि विधानों के बारे में चर्चा करते हैं, हमारा 16 माला जाप होना है, 4 नियमों का पालन होना है, बस हमारी इतनी ही कल्पना है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी के? हाँ जी।
कृष्ण भगवान का नाम गर्ग मुनि ने रखा है, तो राधा रानी का नाम किसने रखा?
वैसे नारद मुनि आए थे, ये लीला हम आज शाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो नारद मुनि श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य या जन्म के समय आए थे, और क्या हुआ और फिर नारद मुनि ने किस तरह से श्रीमती राधा रानी का दर्शन किया इत्यादि, हम इसको शाम में चर्चा करेंगे।
हरे कृष्ण। जो अभी आप बताए लीला राधारानी के साथ कृष्ण का मिलन, ये जो भूम वृंदावन में ही हुआ था या गोलोक वृंदावन में भी ऐसा ही होता है?
ऐसा ही ये भूम वृंदावन की बात है, लेकिन गोलोक वृंदावन में भी ऐसे होता है, क्यों नहीं। वहां भी श्री कृष्ण परिके रस का स्वाद लेते हैं, ठीक है, भी गोपियों कृष्ण के प्रेम को देखकर ईर्ष्या नहीं होती है? नहीं, यही तो आध्यात्मिक जगत की खूबी है कि सारे गोपियां एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहती हैं कृष्ण प्रेम में। आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में यही अंतर है कि भौतिक जगत में सभी लोग एक दूसरे को नीचे खींचना चाहते हैं, केकड़ों, है ना, वो आप कई बार सुन चुके हैं वो उदाहरण कि जब आदमी केकड़े पकड़ता है, केकड़े बोलते हैं ना, क्रैब, और बाजार में बेचने जाता है तो उसको ढक्कन डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने मन में निश्चिंत रहता है कि ये लोग भाग के नहीं जाएंगे बाहर से, क्यों, क्योंकि एक चढ़ने लगेगा बाहर निकलने के लिए, दूसरा कहेगा ये ऊपर जा रहा है नीचे खींचो इसको, ये जा रहा है, भले वो सब निकल के जा सकते हैं, अगर एक दूसरे को केवल न रोके हैं तो हर एक केकड़ा उसमें से निकल से आराम से जा सकता है, लेकिन वो दूसरे को देखते जा रहे उसको नहीं निकलना चाहिए, उसको नीचे खींच लो, हमारा भले कुछ भी हो जाए लेकिन उसको हम नहीं जाने देंगे। यह है ना भौतिक जगत की वृत्ति, हमारा नुकसान हो जाए नाश हो जाए लेकिन उसका भी नाश होना चाहिए। तो यहां पर हम दूसरे की प्रगति से, दूसरे के सौभाग्य से, दूसरे के आनंद से हम दुखी हो जाते हैं, और दूसरे के दुख से, दुर्भाग्य से हम खुश हो जाते हैं। लेकिन भगवान के धाम में क्या होता है, सभी लोग श्री कृष्ण के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, सेवा के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसलिए हमारे भक्त समाज में भी, भक्तों के बीच में कभी भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हमें हमेशा दूसरों को सेवा के लिए आगे बढ़ने के लिए मौका देना चाहिए और उनकी प्रगति में हमें आनंद लेना चाहिए। सेवा के लिए आगे बढ़ने के लिए मौका देना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि घोषणा हुए कि मंदिर झाड़ू मारने के लिए कोई है तो लेने में हम दूसरों को चांस देंगे सेवा करने का, ऐसा नहीं। आखिर हमको सबको चांस देना ना आगे बढ़ने के लिए, हमने इस भागवत क्लास में सुना कि दूसरों को देना, हम आराम से बैठेंगे बाकी सब सेवा करेंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि दूसरों के भक्ति में हम बंधन न डालें, बल्कि उनको प्रोत्साहन दें, उनके लिए अनुकूल परिस्थिति बनाएं, और दूसरे के प्रगति में हम आनंद लें, दूसरों की प्रगति से हम ईर्ष्या न करें। अगर हमारे बाद में भी कोई भक्ति में आए हो और अगर वो आगे बढ़ने के लक्षण दिखा रहे हो, हमसे आगे निकल रहे हो, तो उल्टा हमको खुश होना चाहिए। लेकिन ये ईर्ष्या की भावना जो हम भौतिक जगत से लेके आए हैं बहुत खराब है। हमारे मन में ये द्वेष से ईर्ष्या की भावना निर्माण हो जाती है कि ये भक्त हमसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ये भक्त ज्यादा अच्छा कीर्तन करता है हमसे, ज्यादा श्लोक इसको पाठ है, ये ज्यादा आगे बढ़ गया है, ज्यादा सेवा करता है। तो ऐसे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हमें गोपियों के उदाहरण से, ब्रजवासियों के उदाहरण से सीखना चाहिए कि आपस में इतना प्रेम होना चाहिए, ऐसे निर्मत्सर भावना होनी चाहिए कि दूसरों के प्रगति में हमें आनंद लेना चाहिए। तो अवश्य श्रीमती राधा रानी जब दूसरे गोपियों को देखते हैं तो कभी भी ईर्ष्या नहीं होती, जैसे सखियों को, मंजरियों को, उनको आनंद लगता है। बल्कि एक बार श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण का विवाह वृंदा देवी से भी कर दिया था, क्योंकि वृंदा देवी सारे राधा कृष्ण की लीलाओं के का व्यवस्थापन करती हैं वृंदावन में। तो कृष्ण भगवान और इन सारे गोपियों के जो संबंध है, लीलाएं हैं, ये तो दिव्य हैं, इनकी नकल यहां पर नहीं हो सकते हैं। और कोई प्रश्न किसी के? मनुष्य को जो आकर्षण होता है किस किन चीजों के प्रति? संसार की चीजों के प्रति, संसार का प्रेम, आपस में जो मनुष्यों के बीच में प्रेम होता है उसका आकर्षण क्या, आकर्षण का कारण क्या है? यहां तो कामदेव का तीर है जो आकर्षण पैदा करता है। कामदेव सब जगह बैठे होते, कौन अभी अगला हमको शिकार मिलेगा, हमेशा अपने तीर धनुष तैयार खड़े लेके रहते हैं, कोई मिला छोड़ देते हैं तीर, और वो आदमी बुरी तरह से घायल हो जाता है। सभी लोग घायल हैं इस जगत में। कामदेव के तीर एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे चलते हैं, हर एक व्यक्ति बूढ़े से बूढ़े भी घायल हैं इससे। ये सबसे बड़ा खतरनाक आकर्षण है। और ये आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि हम परम आकर्षक युगल किशोर राधा कृष्ण को भूल चुके हैं। आकर्षित तो हमें उनकी ओर होना चाहिए, और क्योंकि उनकी ओर हमने पीठ दिखाया है इसलिए आकर्षण यहां पर विकृत रूप में होना, कहीं ना कहीं तो आकर्षित हमें होना ही है। ये जीव का स्वभाव है आकर्षित होना, आकर्षित करना और आकर्षित कराना। परंतु जब विषय हमारे आकर्षण का बदल जाता है, ये संसार की ओर हम देखते हैं, तो संसार की माया शक्ति हमें प्रलोभन देती है, अलग अलग तरह के आकर्षित करती है, इसके प्रति हम आकर्षित होकर शिकार हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, फिर बारंबार जन्म मृत्यु का चक्कर में हमें भुगतना पड़ हमें आता है। तो अगर हमें इस आकर्षण से निकलकर, जो आकर्षण की हमारे केवल दुख का कारण है, तो हमें श्री कृष्ण राधा कृष्ण के प्रति आकर्षित होने का प्रयास करना चाहिए, उनके पवित्र नामों का जप करके और उस भक्ति मार्ग को स्वीकार करके। उनके प्रति जब आकर्षण हमारे हृदय में आ जाएगा तो इस संसार का आकर्षण हमारे मन से निकल जाएगा। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जनं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा, ऊंचा स्वाद हमको मिलेगा उस ऊंचे आकर्षण में। तो इस संसार में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होने का कारण केवल माया है, बस। ठीक है, गोलोक वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में वहां भी क्या जटिला कुटिला अभिमन्यु है? अवश्य, इसलिए तो वहां स्वाद बढ़ता है, परके रस का स्वाद बढ़ता है। प्रश्न यह है कि अन्य संप्रदायों में राधा रानी की कृपा की अभिलाषा नहीं करते हैं, तो वो केवल कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो क्या उनको गोलोक वृंदावन प्राप्त नहीं हो सकता है? ये प्रश्न है ना। वैसे निम्बारक संप्रदाय में भी राधा रानी को मानते हैं, वल्लभ संप्रदाय में भी मानते हैं, हालांकि वल्लभ संप्रदाय में वात्सल्य रस के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। जैसे हमारे आराधना या जैसे हमारे भाव, वैसे हमारी गति होगी। अगर हमने वैकुंठ भाव में भगवान की उपासना की, हम वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। अगर हमने व्रज भाव में किया तो व्रज की प्राप्ति करेंगे, गोलोक वृंदावन की। और अगर हमने श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों में हम चले, उनकी कृपा के लिए हम अभिलाषा करते हैं, तो फिर हम गोलोक वृंदावन में जाकर गोपी भी बन सकते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी की भक्ति से हम ग्वालबाल भी बन सकते हैं, वृंदावन में हम कुछ भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम राधा रानी की भक्ति करते हैं तो हमको गोपी ही बनना है वहां जाकर, नहीं, कुछ भी हो सकता है, हमारा भाव जैसे है, लेकिन राधा रानी की कृपा से, इसलिए उनकी कृपा से हमें ये अलग अलग भाव मिलेंगे। तो जो अन्य संप्रदाय में है वो राधा रानी के विस्तारित रूप लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करते हैं, लक्ष्मी नारायण। और वैसे हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण। अगर हम राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कृष्ण भी है, क्योंकि कृष्ण की कृपा वहां जाएगी जहां उनके भक्तों की कृपा जाएगी। तो राधा रानी जहां अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे, कृष्ण की कृपा दृष्टि वहां होनी ही होनी है। जहां लक्ष्मी देवी की कृपा जाएगी वहां नारायण की दृष्टि होनी ही होनी है। जहां पर नारायण की सेवा की जाएगी वहां लक्ष्मी देवी भी आएंगी। तो अन्य संप्रदाय में वो लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं, लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं, तो उनको उस हिसाब से गति प्राप्त होगी। हम जो राधा रानी की सेवा करते हैं, हम उनकी कृपा की याचना करते हैं, तो राधा रानी की कृपा से हमको कोई गोलोक वृंदावन में स्थान मिल सकता है, अगर वो हमारे ऊपर प्रसन्न हुई तो। देवी तो परम भक्त हैं कृष्ण।
हाँ, श्री प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं कि हम राधा कृष्ण को जो वर्शिप करते हैं वो लक्ष्मी नारायण के रूप में वर्शिप करते हैं, जैसे परसों भी आपने बताया था। तो हम वैसे राधा रानी से डायरेक्ट एक्सेस कैसे, मतलब
राधा कृष्ण के विग्रहों को लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजते हैं, इसका मतलब ये है, क्योंकि हम वैधि भक्ति में हैं, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए अर्चना आराधना करते समय। हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं, अज्ञान है, इसकी वजह से अगर हमने राधा कृष्ण के विग्रहों के प्रति कोई अपराध किया तो हमारे भक्ति के लिए ये हानिकारक हो सकता है। इसलिए सावधान किया जाता है सारे भक्तों को शास्त्रों में कि विग्रह के सामने जाते समय थोड़ी स्वच्छता के नियम होने चाहिए, समय वगैरह पे सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, बड़े भक्ति भावना से जाना चाहिए, आदर होना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, ऐश्वर्य की भावना एक है। इसलिए ये कहते हैं प्रभुपाद जी कि हम राधा कृष्ण की पूजा लक्ष्मी नारायण के भाव में करते हैं, क्योंकि बहुत सारे विधि विधान इत्यादि का पालन करते हैं। असली राधा कृष्ण की पूजा व्रज में की जाती है, और व्रज में कोई ऐश्वर्य की भावना नहीं है। ऐश्वर्य है लेकिन ऐश्वर्य की भावना नहीं है, वहां कोई विधि विधान नहीं है। इसलिए वृंदावन के मंदिरों में आप देखेंगे, यहां जैसे हमारे फिक्स टाइम होते हैं, ये टाइम खुलेगा, कभी कभी होता है, कभी नहीं भी होता है, कभी खोलेंगे बंद करेंगे। वो इस्कॉन भक्तों के कहते हैं, आप लोग तो फौजी, खुलना यही टाइम है, बंद होना यही सब ठीक ठाक होना, बोलते हैं हमारे भाव के ऊपर हम लोग करते हैं, वो वृंदावन में करते हैं। जब विधि विधान होते हैं, ईश्वर की भावना होती है, तो फिर लक्ष्मी नारायण प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से प्रभुपाद ने ऐसे कहा था, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।